ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अब वो कथा सुनाने लगा प्यारा प्यारा। उस दिन प्रकरण क्या रहा था, भरत का चरित्र, और उसमें सुनाया गया था, उसमें लिखा गया था कि भाई हो तो ऐसा हो भरत जैसा हो, भाई हो तो ऐसा हो भरत जैसा हो। भाई के राज्य को स्वीकार नहीं किया, जमीन में 6 इंच गड्ढा खोद कर नीचे रहता था, सोता था, और राज की उसके स्थान पर खड़ा रख दी थी गद्दी पर भगवान राम की। रामचंद्र जी आए, उसका राज सौंप दिया था, भाई हो तो ऐसा। सबने ताड़ी पीटी, वाह पंडित जी वाह पंडित जी, बड़ी कथा सुनाई। एक भगत वहां बैठा था, कोई व्यक्ति बैठा था, उसने कथा करवानी थी और कल से प्रारंभ करानी थी, उसने को पंडित जी नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि पंडित जी बड़ा भाग्य हुआ मेरा, मैं तो ब्राह्मण ढूंढ रहा था और कल से हमने कथा शुरू करानी है, हमने सब जगह न्योता दे रखा है, और स्वामी जी आप कथा पर चलो, हमारी कथा कर दो। बोला कल नहीं आ सकता, कल नहीं आ सकता। हाँ जी क्या, और भी कहने लगे जी जाओ, इसका तो बड़ा काम अड़ा बड़ा बेचारे का, और ब्राह्मण का तो काम में ये होता कथा करने का, कि नहीं कल नहीं जा सकता। भी कारण तो बताओ क्यों नहीं जा सकते, तो कोई काम है था, हम कर देंगे आपका। उसका साथी था ना, वो बताओ, वो कहने लगे मैं बताऊं क्या काम है इसको, अब बताओ। पंडित जी ने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है एक कुरडी के खड्डे पर, यानी 10 गज जगह है, उसके ऊपर अपने भाई पर केस कर रखा है, कल इसकी कोर्ट में तारीख है, हर मैं इसका गवाह हूं। तो पुण्यात्माओं, खुद तो भाई पर केस कर रहा है 10 गज जगह पर, और कथा सुना रहा है व्रत की कि भाई होता है ऐसा, और आप भाई उस पर केस कर रहे हैं अपने भाई पर एक 10 गज जगह के ऊपर, जिस मडंगा डाला कर उसको कुरडी बोलते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि करणी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भोकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। एक समय एक तोतादर नाम का स्थान है तोतादर, और वहां पर ब्राह्मणों का ये भंडारा था, सम्मेलन था, और उधर से परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद ब्राह्मण, और परमेश्वर धानक जुलाहे और रामानंद उनके, वैसे तो मुंह बोले तो गुरुजी थे लेकिन उनको पता चल चुका था परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के आदेश अनुसार वो केवल भूमिका कर रहे थे गुरु की। अब उन ब्राह्मणों ने तोता देर में जो समागम था, सभी ब्राह्मण ब्राह्मण बुलाए थे, तो रामानंद जी तो बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे, उसको आमंत्रित करना अनिवार्य था, वो तो आमंत्रित कर दिए। तो जहां भी रामानंद जी कबीर साहब के मिलने के बाद वो परमेश्वर को साथ ले जाते थे। अब सत्संग चल रहा था, परमात्मा बैठे थे, कबीर साहब भी बैठ गए, रामानंद जी अपना बैठ गए, कबीर साहब श्रोताओं में बैठ गए, रामानंद जी उन ब्राह्मणों की स्टेज पर बैठ गए। उसमें क्या कथा सुना रहे थे ब्राह्मण लोग, कभी भाव हो तो भीलनी जैसी, भक्ति हो तो भीलनी जैसी। देखो श्री राम ने उस सुदर के झूठे बेर खाए, चाक चाक के दे रही थी और भगवान खा रहे थे, रुचि रुचि खा रहे थे। भाव भक्ति हो तो ऐसी हो, भगत हो तो ऐसा हो। और रामचंद्र जैसे भगवान और गुरु हो, जैसे वो कभी छुआछात नहीं किया। अब सत्संग समापन हुआ, उन्होंने पता लग गया ब्राह्मणों को कि रामानंद जी के साथ कबीर जी आए हैं, ये सूदर है, बता दिया किसी ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का यानी ब्राह्मणों का भंडारा न्यारा शुरू कर दिया अलग से, और अन्य जो बाहर के आए हैं वो अलग खाएंगे। जो ब्राह्मणों का यानी पंडितों के लिए जो भोजनालय था, उसमें प्रवेश के लिए कंडीशन लगा दी कि जो चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना देगा, वही इस भंडारे में आओगा। उनको मालूम था कबीर जी तो जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, इसलिए आप पे ठट जाएंगे। अब जब सब ब्राह्मण आ रहे थे, उन्होंने तो घोट रखे थे, श्लोक सुनाओ और फट दे, मंत्र सुनाओ और अंदर जाओ, मंत्र सुनाओ अंदर जाओ। अब परमात्मा का नंबर आया कि जी मंत्र सुनाओ। वहां एक भैंसा घूम रहा था, आसपास चल रहा था चारा, छोटा सा एक भैंसा। उसको कहा भैंसा राम इधर आना। परमात्मा ने ऐसे किया, भैंसा राम वो ऐसे देखा कि आजा, वो आगे खड़ा होगा परमात्मा कबीर जी के पास कि पंडित जियों को वेद मंत्र सुना, कर पे हाथ मार दिया कमर पे। अब जोटा लग गया सुनान, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी स्वर ज्योति रत धामा असी। उन चारों वेदों एक एक मंत्र सुना दिया और सब हैरान। जोटा बोला, परमात्मा बोले जा जोटा, राम राम बना के भंडारे में खा ले रोटी, मैं तो वहीं खा लूंगा भाई जहां और खा रहे हैं। वहां कम से कम 4-5 हजार ब्राह्मण थे। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया वहां पर खड़ा होकर। अरे तुम बात तो सुना रहे थे बेलनी और राम की, तुम भगवान से बड़े हो गए, उसने तो सुदर से कोई नफरत नहीं की बेलनी से, अरे तुम नफरत कर रहे हो। यहां परमात्मा ने कहा था कि करणी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकित पर ये सुनी सुनाई बात। कथनी कर का है नहीं कहते, कथनी के सूर्य गणे ये कथे अटम्बर ज्ञान, और बार जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। 5 हजार ब्राह्मणों ने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया और नाम स्वीकार किया और भक्ति की अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, हमारे पिता हैं। ये ब्राह्मण भी उसी के बच्चे थे, कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने धन के काज। उनको लाइन पे लाना था, आज तो ब्राह्मण बने फिरे थे, अहंकार में डूबे फिरे थे, बढ़िया इज्जत थी संसार में, कल क्या बनता उनके साथ। कहते पंडित हो कुकरा हव करे हमेश, अगले दिन में ये ब्राह्मण कहते कुत्ते की नींद जाग जो सत भक्ति नहीं करता फिर भौंकता फिर है। तो भगवान अपने बच्चों को इन दुखों से बचाने के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए यही कारण बनाया और उनको सत भक्ति दी, उनका कल्याण कराया। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु, और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास है इस विश्व में। अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ, चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की। अभी आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि यहां आने का लाभ यही है, आपको समय मिलता है पूरा। नहीं तो घर में टीवी देखते हो, 2 मिनट में भैंस खुल गई, फलाना काम हो गया, आइए फलाने काम है। तो इसलिए यहां बुलाया जाता है, शांतिपूर्वक श्रद्धा से सत्संग सुनो, और ये सभी यहां की क्रियाएं आपके सहयोग देंगी प्रत्येक उसमें मोक्ष के लिए। ध्यान से सुने।
नमस्कार जी।
सत साहेब।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
पीरा दास पड़वार
जी। कहां से आए आप?
ग्राम ईश्वरपुर, पोस्ट रामपुरी, थाना तहसील नैनपुर, जिला मंडला, मध्य प्रदेश।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
मैं कबीर जी ही को मानता था जो दामा खेड़ा से संलग्न था मैं।
दामा खेड़ा से किस संत से आपने नाम उपदेश ले रखा था?
मैं बचपन ही से साहब करीब 200 साल हो गया वहाँ पे।
किस संत से नाम उपदेश दिया था आपने दामा खेड़ा गद्दी से?
मैं सन 70 से ग्रंथ मुनि नाम साहेब से।
ग्रंथ मुनि नाम साहेब से आपने सन 1970 में नाम उपदेश लिया था, जो वर्तमान गद्दी नसीन श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब जी के पिताजी हैं, उनसे आपने कबीर पंथ में दामाखेड़ा गद्दी से आपने नाम उपदेश लिया। तो क्या नाम जाप करने के लिए दिया ग्रंथ मुनि नाम साहेब जी ने आपको?
नाम दिए थे वो, पांच नाम दिए थे।
कौन कौन से थे पांच नाम?
उसमें वो बताए थे जी, वो नाम थे अमर पिंडनी अक्षर काया, पुरुष ध्यान सदगुरु ने लखाया, मरे न पिंड असु चमकाई, आसीन कोट जल जीव में रहे समाई, पूर्व ब्राह्मण आही न जाही, कबीर सत कबीर में रहे समाई, कबीर का शब्द पूरन संपूर्ण, दया करो सतगुर सत कबीर।
ये जो नाम आप अभी बता रहे हैं, ग्रंथ मुनि नाम साहिब जी ने आपको ये नाम जाप करने के लिए दिया था, तो इस नाम का जाप आपने 30 साल तक किया, तो क्या लाभ मिला आपको इस भक्ति का, इस नाम जाप करने का?
जी, इस नाम जाप करने से मुझे कोई लाभ नहीं मिला।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
सब मैं घर में टीवी चैनल में, साधना चैनल में देख रहा था, हमारे यहाँ हमारे जड़साले थे श्री राम रतन दास जी, वो देखे कि चैनल में ये आ रहा है तो मुझे बताए कि चैनल में देखो अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। उसको जब मैं देखा तो उस दिन से हम प्रतिदिन देखने लगे। इसके बाद में हुआ क्या कि मैं बहुत गांजा और बीड़ी पीता था, जिससे मेरे गले में दर्द हो रहा था। मेरे एक जो साथी था उसको बीड़ी पीने से कैंसर हो गया और वह खत्म हो गया। अब मैं 2-3 डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर लोगों के इलाज से होता क्या था कि जब तक मैं दवा गोली खाता था तब तक मुझे आराम था, और जो दवा गोली खाना बंद करूं तो फिर चालू हो जाए। तो मुझे भारी शंका हो गई कि हो सकता है इसमें फिर मुझे कैंसर हो गया। तो एक दिन फिर मैं सदगुरु रामपाल महाराज को याद किया और उनको बोला कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बंदगी है, आप मेरे दुख को दूर करो। शाम की नमन किया हूं और सुबह से बगैर दवा गोली खाए हुए और मेरे दुख बिल्कुल दूर हो गया, आज तक कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और उसी दिन से बाद में बीड़ी भी पिया, और जब यहां आने लगा तो मेरे को बार बार याद आ रही थी कि मैं बीड़ी पीऊं या सिगरेट लेकर के पी लूं। और जब यहां आया और नामदान लिया, उस दिन से मुझे आज तक बीड़ी भी अच्छा नहीं लगता और कोई पीते हैं सामने तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता।
जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने पहले कबीर पंथ में दामाखेड़ा गद्दी से श्री गंध मुनि नाम साहिब जी से नाम उपदेश लिया, और उन्होंने जो मंत्र आप जाप करने के लिए आपको दिया उसका आपने उसका 30 साल से भी ज्यादा तक वो जाप किया, आपको कोई फायदा नहीं मिला, आपको कैंसर तक हो गया। उसके बाद आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने की सोची, और ऐसा सोचते ही परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नाम लेने का संकल्प करते ही आपकी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक कर दिया, और फिर आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सत भक्ति दी। तो जो सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
उस भक्ति से मुझे ये लाभ हुआ है कि सन 88-87 से मेरी पत्नी को बच्चादानी में कैंसर हो गया था, जिसका ऑपरेशन जबलपुर मेडिकल में हुआ। इसके बाद भी उसके पानी जाना बंद नहीं हुआ था। जिस दिन मैं अपनी पत्नी धर्मपत्नी को यहां लाया और नामपान दिलवाया, उसी समय से उसके पानी जाना बिल्कुल एक जाय बंद हो गया है और हम अभी अमन चैन से रह रहे हैं। और अब शारीरिक लाभ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जो प्रभु प्रदान किए हैं अभी मैं सब तरह से परिपूर्ण हूं, अच्छा हूं, स्वस्थ हूं। और सर्वप्रथम ये लाभ है कि मैं जो भटक रहा था परमात्मा को पाने के लिए, तो वो संत रामपाल महाराज जी के द्वारा हमें वह भक्ति लाभ मिला, मुक्ति मार्ग मिला, और उस मुक्ति मार्ग से हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उस लोक को अवश्य हमारे महाराज जी के द्वारा अवश्य प्राप्त होगी हमें।
भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो जितने भगत समाज हैं वो अन्य ब्लोम में डालने वाले संतों से छुटकारा पा करके और यहां बरवाला में आए संत रामपाल जी महाराज के पास में, और अपना कल्याण कराएं।
जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार सर।
नमस्ते सत साहब सर।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
मनी राम दास जी।
सर कहाँ से आए हैं आप?
बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
इनके शरण में आने से पहले मैं बचपना से ही आध्यात्मिक में ही रुचि था, लेकिन गुरु नहीं मिलने के कारण देवी देवताओं का ही पूजा करता था। देवी देवताओं का सबसे पहले गुरु घासीदास का हम लोग पूजा वूजा करते थे घर में, और उसके बाद सभी संत महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा माँ और गणेश जी ये सभी का पूजा करते थे अपने श्रद्धा अनुसार।
ये सब जो पूजाएं आप करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश का माता जी का, और बता रहे हैं आप गुरु घासीदास जी द्वारा बताई भक्ति भी आप करते थे, इस सब भक्ति को ही और इन सब पूजाओं का आपको क्या लाभ मिला?
इन पूजाओं का ऐसे जैसे चलता रहा वैसे तो चलता ही रहा, लेकिन हमारी आत्मा में संतुष्टि नहीं होती थी और तलाश जारी था आध्यात्मिक का हमको।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया आपके ऊपर कैसे हुई?
उनके दया हमारे ऊपर ऐसे हुई, टीवी के माध्यम से हम उनका सत्संग देखे और हमारे भाई लोग कुछ जुड़े थे, उन्होंने हमको बोला कि ऐसा ऐसा बात है भैया, तो वहां जाकर सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेकर और उनका सत्संग सुनकर और उनका ये करके और अपना जीवन का लाभ उठाएं ऐसे करके मैं आया, मेरा मिसेस आई और मेरा एक बच्चा है वो भी आया।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, जो शास्त्र अनुकूल साधना परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
भक्ति का हमें वैसे तो छोटा मोटा लाभ अनगिनत मिला है, और एक दो बड़ा लाभ है उनको हम बता सकते हैं। तो मकान बनाने के लिए मैं 2-3 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन मकान नहीं बना पा रहा था। जब इनके भक्ति में जुड़ा तो साथ के साथ भक्ति भी होती रही, यहाँ आते रहे और मकान भी बनते रहा, आज के दिन मेरा मकान तैयार हो गया है। दूसरी शरीर तकलीफ कुछ रहता था उसमें भी बहुत कुछ राहत मिला हमको, और इनसे पहले जब देवी देवताओं का पूजा करते थे उस समय शरीर में बहुत तकलीफ सा रहा करता था, जैसे ठंड के समय आया तो सर्दी खांसी से हम पूरे परिवार परेशान हो जाते थे, लेकिन इस साल वैसा महसूस हमको नहीं हुआ।
सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भक्त समाज को यही संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि हमारे साथ जो हुआ है और अनुभव किए हैं उनको हम भक्त समाज को बताना चाहते हैं कि सच्चा सद्गुरु बरवाला में आए हुए हैं संत रामपाल महाराज जी, उनके शरण में आकर और उनसे दीक्षा लेकर और अपने जीवन को मोक्ष की मार्ग की तरफ ले जाएं और इस दुनिया में भी सुख शांति को अनुभव करें।
जी धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनो शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं, गर्मी और सर्दी वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तैसे बनते रहेंगे, और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं, ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की, अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है उसी कर्म को, उसी साधना को सत मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है, इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा, कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ, अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धारणक रूप में, दुलाहे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता हैं। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोतावार, ये धानक रूप रहा करता है। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा क्यों कर मौंडा पावे। फिर 721 प्रश्न पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अरज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहिब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाहु अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने पांच वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक पांचवा वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है, वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है, उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहां रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, कह खै भी नहीं जानते अध्यात्म मार्ग। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर, आप जी के धर्म गुरु हैं। ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी और जितने भी पीर, ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कहकर के कबीर साहब तो अशिक्षित हैं, कोरी झूठ बोलते हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा सबसे कहिए वो राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का वर्म नसाओ, भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का वेद न जाना, अब मैं तुमसे कहूं चताई तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जुम दौरुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय किन ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में, तीन गुण कौन, रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार, और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो वह मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी एक संस्कृत भाषा के जाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाह है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, गुण तीनों की भक्ति में, होय होय, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है यह समझ में ना रही थी इनका आज तक, तो परमात्मा ने बताया कि रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव, कहा वेरे चौथे पद का मरहम न्यारा, कोई तत्व दर्शी बतावे रे। अब तीन गुण कौन थे, भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि तीन देव, तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी, और हमारे दादे परदादे इन्हें पूज पूज के मर गए, तो क्या मुक्त हुए वो, नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं, पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये तीन गुण क्या है, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो श्रीमद देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों गुण कौन है, देखिएगा ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक। ये छपी कहां से है, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको, ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं, ये 11 पृष्ठ है, और पांचवें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान कह रहे हैं, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए, अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कृत देखेंगे। यदि दया धर्मनान सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित च, क्यों मैं बना दिया, तमोगुण है तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया, और सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, देखिए यह है मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 22-23 पृष्ठ पर दिखाएंगे, ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहां आ जाते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद भगवत गीता में उनको क्या संज्ञा दी है, इस त्रिगुण में ही माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख चार गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता हूं मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है, ये ब्रह्म है, ये सर्वपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान बोल गया। आइए पढ़ें अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते, हम पढ़ा करते समझा नहीं करते, हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से ही मोक्ष होगा, नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हो, हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में, हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा अब सातवां अध्याय पढ़ते हैं, देखिएगा श्री मद भगवत गीता जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक हैं गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं सातवां अध्याय, ये स्टार्ट है अथ सप्तमो अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण समग्रम संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्म रूप माम मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब क्या कहता है गीता ज्ञान दाता, कहता है कि अब जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं इसके जानने के बाद तुझे कोई शंका नहीं रहेगी मैं क्या हूं। आगे देखो दूसरे श्लोक में कहा है सातवां अध्याय दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को तत्व ज्ञान ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा इसके बाद फिर कुछ जानन की जो आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिएगा इसमें क्या बताता है तीसरे मंत्र में, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धे माने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले सिद्धानाम साधकों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से वेति माने जानता है, तत्व से जानता है। ये क्या कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों में से कोई ही भक्ति करना चाहता है, परमात्मा के प्रयत्न कर रहा है, उनमें से मेरे तक भी कोई एकाधा ही पहुंचता है, ना तो नीचे के देवी देवताओं तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे देखो फिर क्या बता रहे हैं, चौथा और पांचवें का इकट्ठा अनुवाद है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाभाव इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति जान। अब यहां दो से दोगे, दो प्रकृति है, एक तो इन्होंने बता दिया पांच तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ प्रकार से बनी प्रकृति। दूसरी बता रहे हैं ये चेतन प्रकृति, ये दुर्गा है। दुर्गा, अब देखो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा को भी प्रकृति कहते हैं और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है, जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कहते हैं अपनी मां के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान ज्ञानता से सुना नहीं होता ध्यान से, और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं वो आते हैं। तो यहां इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है, दो घंटे सुबह दो घंटे शाम को, तो इसलिए यहां एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद देवी भागवत देखिएगा सचित्र मोटा टाइप हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ लें पर्याप्त है। 123 पृष्ठ तीसरा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि भगवान विष्णु तुमसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया इस थोड़ी सी पंक्तियों में, कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर एक, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, नंबर दो दुर्गा को प्रकृति कहते हैं, नंबर तीन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, और नंबर चार रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, नंबर पांच ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। ये पांच कंसेप्ट पांच पॉइंट कति सिद्ध हो गए। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण। इस संक्षिप्त शिवपुराण के अंदर ये गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहां से प्रकाशित है देखिएगा, अनुमान प्रसाद पोदार इसका इनके संपादक हैं और प्रकाशक हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहां देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां पांचवा अध्याय रुद्र संहिता का हम पढ़ेंगे, छठा, पांचवें के एंड को पढ़ रहे हैं। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पिता महाब्रह्मा वह इस प्रकार बोले, पांचवा अध्याय समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का 99 पृष्ठ पे। नारद ने पूछा था कि सृष्टि की रचना बताइए भगवान पिताजी ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने बताया, अब आपके रूबरू पढ़कर सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन श्रोमणे, तुम सदा समस्त जग के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा आदि आदि कुछ भी नहीं थे, उस समय तत् सद्ब्रह्म जिस श्रुति में सत सुना जाता है, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ सच्ची कुछ झूठी जो मैंने सुनी है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इनका क्या मानना है कि परमात्मा मूलतः निराकार है और उसने फिर अपने आकार में आने की सोची, तब क्या बन गया, वो सदाशिव बन गया, फिर वो सदाशिव बन गए। अब देखो क्लियर होगा यहां से, उसने कल्पना की, मूर्ति की कल्पना की अपने लिए, उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति यहां देखिए, भगवान सदाशिव हैं। अब सदाशिव कौन है ये देखना जान से, ये किसको सदाशिव कहते हैं, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस प्राशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उनकी माता ब्रह्मा विष्णु महेश की माता नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर। अब ये दुर्गा के विषय में है और सदाशिव ये कौन है, ये काल है, आगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3-5 में कति स्पष्ट किया गया है। ये काल कहता है, गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी प्रकृति, तो मेरी पत्नी है, सब्जियों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। तीनों गुण कौन सी सिद्ध होगी? रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विषमतम गुण। शिव जी ये देखिएगा, अध्याय 14 और सुनाता हूं, ताजा ताजा है, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करने वाला तत्व करता हूं, उसके संयोग से जड़ते इतने से नहीं सब भूतों की सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। और 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों गुण ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहां फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्मराया कहिए इन पांचों मिल परपंच बनाया वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने इन पांचों ने मिलकर ये परपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को, इन पांचों मिल जीव अटकाए युगन युगन हम आयन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यहां पवित्र शिव प्राण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा ये संक्षिप्त शिवपुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे, यहां आगे थे हम। कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हें ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्माओं परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना डंगते हैं। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी, पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि सदाशिव पहले निराकार था फिर सदाशिव बन गया, उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं, तीनों देव की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता और उसकी 8 भुजाएं। यहां कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रत्नामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहां मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं होगी, क्लियर। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है, देखिएगा। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अभी इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने छठा अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का, सातवां, ये सातवां अध्याय 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म।